कमरे में हल्की पीली रोशनी फैली हुई थी। दीवार पर लगी छोटी सी लैंप लाइट पूरे कमरे को एक नरम लेकिन अजीब सी खामोशी से भर रही थी। बाहर डिस्को का म्यूजिक अब भी चल रहा था, लेकिन यहाँ वो बस हल्की सी धड़कन जैसा सुनाई दे रहा था। अदिति बिस्तर पर आधी लेटी हुई थी। उसके बाल तकिए पर फैले हुए थे और उसके चेहरे पर नशे की थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसकी पलकों के बीच आधी सी खुली आंखें थी, जैसे वो पूरी तरह बेहोश नहीं थी लेकिन पूरी तरह होश में भी नहीं। विक्रांत कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा उसे देखता रहा। उसकी शर्ट के दो तीन बटन अब खुल चुके थे। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ा। कमरे में इतनी खामोशी थी कि अदिति की सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। विक्रांत बिस्तर के किनारे आकर बैठ गया। उसने झुककर अदिति के चेहरे को देखा। उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए थे, शायद ड्रिंक और डांस की थकान दोनों का असर था। अदिति ने हल्का सा करवट बदलने की कोशिश की। उसके होठों से धीमी सी आवाज निकली। विक्रांत के चेहरे पर फिर वही अजीब सी मुस्कान लौट आई। उसने धीरे से कहा, आराम करो अदिति। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे वो किसी सोए हुए इंसान को जगा देना नहीं चाहता हो। अदिति की आंखें एक पल के लिए हल्की सी खुली। वो शायद उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी। विक्रांत? उसकी आवाज बेहद धीमी थी। विक्रांत थोड़ा और झुक गया। हाँ, मैं हूं, तुम बस आराम करो। उसने धीरे से उसके बालों को कान के पीछे किया। अदिति की सांस थोड़ी भारी थी। बहुत शोर है, उसने बमुश्किल कहा। विक्रांत हल्का सा मुस्कुराया। यहाँ नहीं है, यहाँ सब शांत है। अदिति ने आंखें बंद कर ली। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी छा गई। बाहर डीजे ने शायद नया ट्रैक शुरू किया था। म्यूजिक की बेस दीवारों से टकराकर हल्की हल्की महसूस हो रही थी। विक्रांत की नजरें अब भी अदिति पर थीं। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और अदिति के कंधे के पास आकर रुक गया। कुछ सेकंड तक उसने बस उसे देखा, जैसे वो खुद अपने मन के भीतर चल रही किसी लड़ाई को सुन रहा हो। फिर उसने बहुत धीरे से उसकी ड्रेस के कंधे के पास की स्ट्रैप को उंगलियों से छुआ। अदिति ने हल्का सा सिर हिलाया, जैसे उसे उस स्पर्श का एहसास हुआ हो। आर्यन, उसके होठों से अचानक ये नाम निकला। विक्रांत का हाथ एक पल के लिए रुक गया। उसके चेहरे की मुस्कान हल्की सी फीकी पड़ गई, लेकिन अगले ही पल वो फिर झुक गया। उसने धीरे से उस ट्रैप को थोड़ा सा नीचे खिसकाया। ड्रेस कंधे से हल्की सी ढल गई। कमरे की हल्की रोशनी में अदिति का कंधा साफ दिखाई देने लगा। अदिति की सांसें अब भी धीमी लेकिन भारी थीं। वो पूरी तरह से प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी, बस हल्का सा हिली। आराम से, विक्रांत बुदबुदाया। वो अब उसके बहुत करीब था, इतना करीब कि उसकी सांस अदिति की त्वचा को छू रही थी। कुछ सेकंड तक उसने बस उसे देखा। उसकी आंखों में अब साफ साफ इच्छा झलक रही थी और साथ में एक अजीब सी बेचैनी भी। बाहर से आती रोशनी का हल्का सा रंग कमरे में बदल गया। नीली चमक कुछ पल के लिए दीवार पर पड़ी। विक्रांत धीरे धीरे और झुका। उसका चेहरा अब अदिति के कंधे के बिल्कुल पास था। अदिति ने हल्का सा करवट लेने की कोशिश की। आर्यन, मत जाओ। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे वो किसी सपने में बात कर रही हो। विक्रांत का जबड़ा हल्का सा कस गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो बस कुछ पल तक वहीं ठहरा रहा। फिर उसने धीरे से अपना सिर झुकाया और अदिति के खुले कंधे के पास अपने होंठ ले आया। उसके होंठ बस एक पल के लिए उसकी त्वचा को छुए। एक धीमा, ठहरा हुआ, लंबा सा स्पर्श। कमरे में फिर वही खामोशी भर गई। अदिति हल्का सा सहर गई, जैसे उस स्पर्श का एहसास उसके भीतर कहीं गहराई तक गया हो। उसकी उंगलियां चादर को हल्का सा पकड़ने लगी, लेकिन उसकी आंखें अब भी बंद थीं। विक्रांत ने सिर उठाया। कुछ सेकंड तक वो उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर अब भी वही रहस्यमय भाव थे, जैसे वो कुछ सोच रहा हो, कुछ तय कर रहा हो, या शायद अपने ही इरादों को समझने की कोशिश कर रहा हो। कमरे के बाहर अचानक लोगों की हंसी की आवाज सुनाई दी। किसी ने कॉरिडोर में जोर से कहा, हे, वीआईपी रूम्स इस साइड हैं। विक्रांत ने एक पल के लिए दरवाजे की तरफ देखा, फिर उसकी नजर वापस अदिति पर आ गई। वो अब भी बिस्तर पर शांत पड़ी थी, कंधे से ड्रेस हल्की सी खिसकी हुई, बाल बिखरे हुए और सांसें धीमी। विक्रांत फिर खोड़ा झुका, उसका हाथ अदिति के कंधे के पास ही ठहरा हुआ था। कमरे की हल्की रोशनी में दोनों की परछाइयां दीवार पर लंबी हो गई थीं। और उसी पल कमरे के बाहर किसी के कदमों की आहट धीरे धीरे दरवाजे के करीब आती सुनाई देने लगी। कमरे में कुछ पल पहले तक जो खामोशी थी वो अचानक एक तेज मोबाइल रिंगटोन से टूट गई। विक्रांत का फोन उसकी जींस की जेब में बच रहा था। वो चिढ़कर सीधा हुआ और फोन निकाला। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, डैड कॉलिंग। विक्रांत ने हल्का सा झुंझलाते हुए कॉल रिसीव किया। हाँ डैड, उधर से आवाज काफी तेज थी, लग रहा था कोई जरूरी बिजनेस की बात चल रही थी। विक्रांत कमरे के एक कोने में जाकर बात करने लगा। हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूं, अभी अभी देखता हूं। फोन पर बात लंबी होती जा रही थी। इधर बिस्तर पर लेटी अदिति ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसका सिर भारी था, कमरा हल्का हल्का घूमता हुआ महसूस हो रहा था। वो कुछ सेकंड तक छत को देखती रही, फिर धीरे से उठने की कोशिश की। उफ, उसने अपना माथा पकड़ लिया। दूर खड़ा विक्रांत अभी भी फोन पर बिजी था और उसकी पीठ अदिति की तरफ थी। अदिति धीरे धीरे बिस्तर से नीचे उतरी, उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उसने किसी तरह खुद को संभाला। उसने अपनी ड्रेस का कंधा ठीक किया, बालों को पीछे किया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। कॉरिडोर में हल्की रोशनी थी और दूर से डिस्को का म्यूजिक अब भी गूंज रहा था। अदिति दीवार का सहारा लेते हुए आगे बढ़ी। कुछ सेकंड बाद वो सीढ़ियां उतरकर फिर से डिस्को के मेन एरिया तक पहुंची। भीड़ अब भी पहले की तरह झूम रही थी, लेकिन अदिति की नजर किसी पर नहीं थी। वो सीधे बाहर की तरफ बढ़ती चली गई। कुछ मिनट बाद डिस्को का बड़ा ग्लास गेट खुला और अदिति लड़खड़ाते हुए बाहर आ गई। ठंडी रात की हवा उसके चेहरे से टकराई। पार्किंग एरिया में हल्की रोशनी थी। वो धीरे धीरे अपनी कार तक पहुंची। काफी कोशिश के बाद उसने कार का दरवाजा खोला और ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। इंजन स्टार्ट हुआ, कुछ ही सेकंड में कार पार्किंग से निकलकर सड़क पर दौड़ने लगी। उधर कमरे के अंदर विक्रांत ने आखिर फोन काटा। ओके डैड, आई विल हैंडल इट। उसने फोन जेब में रखा और मुड़ा, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा सख्त हो गया। बिस्तर खाली था। अदिति, वो तेजी से दरवाजे तक आया, कॉरिडोर में झांका, फिर तेज कदमों से नीचे की तरफ भागा। कुछ मिनट बाद वो डिस्को के बाहर पार्किंग तक पहुंच गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अदिति की कार वहां नहीं थी। विक्रांत वहीं खड़ा रह गया। उसने झुंझलाकर अपने हाथ आपस में रगड़े, चेहरे पर साफ गुस्सा था। डैम इट, जिस मौके का वो इंतजार कर रहा था वो उसके हाथ से फिसल चुका था। और अब पार्किंग में खड़ा विक्रांत बस खाली सड़क को देखता रह गया, जबकि अदिति की कार बहुत दूर निकल चुकी थी।